नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्रह्मा कुमारीज के इस फेसबुक लाइव पेशकश में, जिसका नाम है बी द चेंज। फेसबुक पर, यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप ब्रह्मा कुमारीज की इस विशेष पेशकश में जुड़े हैं। पिछले कई दिनों से हम आपके साथ आपके घर आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर इस बदलते वक्त के समय आपको किसी भी चीज की जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, तो हम आपके घर तक ही उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके आउटरीच में आप सभी का बहुत अच्छा योगदान रहा है। आप सभी के रेस्पॉन्सेस को देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस कार्यक्रम से ज्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं। मैं हूं आदेश रणवीर और मेरे साथ आज हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स और मास्टर ऑफ मेडिटेशन के रूप में ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी है। गीता दीदी जी राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में अनेकों स्थानों पर ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, और पिछले अनेक कई दशकों से ब्रह्मा कुमारी के अनेकों भाई बहनों को राजयोग मेडिटेशन सिखा रही हैं, और अनेकों भाई बहन उनसे आध्यात्मिक मार्ग पर पालना ले रहे हैं और गाइडेंस ले रहे हैं। आइए करते हैं उनसे मुलाकात, और बी चेंज सीरीज में आज हम करते हैं उनसे बातचीत। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सवाल है, कोई बात जो आप पूछना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी चीज है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर, दोनों ही जगह आप लिख सकते हैं और हम आपके प्रश्नों को लेंगे, और आज हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन गीता दीदी जी उस चीज का जवाब देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके सवाल प्राइवेट हैं, आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें सोशल मीडिया @brahmakumaris.com पर, जहां पर हम आपके नाम को प्राइवेट रखकर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। गीता दीदी जी वेलकम, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
ओम शांति।
पिछले कुछ दिनों से जो हम बातचीत कर रहे हैं वो इस बदलते हुए वक्त के साथ है। जैसे समय बदला है, कुछ लोग हम इस बदलाव के लिए तैयार थे नहीं, कुछ लोग बहुत जल्दी ढल गए और कुछ लोगों को अभी भी दिक्कत आ रही है। और ये दिक्कत आना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर एक का रिस्पॉन्स टाइम अलग होता है, क्योंकि हम हर एक अलग अलग लोग हैं, हम हर एक परवरिश अलग है, हमारी पैदाइश अलग है, तो हमारी सोच विचार सब कुछ अलग होने के कारण हमारे चेंज के प्रति रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी अलग होता है। तो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इस पर बातचीत की, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर की हैं, और आज भी वो करेंगे और आपसे वो गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। मैं पहला सवाल कल के कुछ सवालों से लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक घंटे के कार्यक्रम में हम ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करते हैं, कुछ सवाल रह भी जाते हैं। कल हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा है, और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि लोग शहरों से गांव की तरफ वापस गए हैं। कुछ लोग अपने पैतृक गांव में गए हैं, कुछ लोग वहां उनके पेरेंट्स रहते थे वहां वापस गए हैं, तो जहां पर भी वापस गए हैं वहां पर उतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना पहले उनको मिलता था गांव वालों से, आस पड़ोस के लोगों से। अचानक उन्हें एक अलग बदले हुए नजरिए से देखा जाने लगा है। कुछ जगहों पर उनको लगने लगा है कि यार ये कुछ असहज व्यवहार कर रहे हैं, और कहीं कहीं जगहों पर तो भेदभाव जैसा माहौल लोगों को देखने को मिला है। तो वो इस बात से काफी हैरान है कि ऐसा बदलाव कैसे आ गया, मैं तो कुछ बदला नहीं हूँ, क्या सिर्फ वो भी मुझे बीमारी हुई भी नहीं है, और फिर भी मतलब लोग अगर ऐसे समझने लगते हैं तो क्या करना चाहिए, मुझे बहुत ठेस पहुंची है इस बात से।
बिल्कुल श्रीनिधि भाई, आपकी बात मैं भी बहुत से भाई बहनों को यहाँ पर मिलती हूँ, तो ऐसी कुछ बातें मेरे सामने भी आई कि उन्होंने ये महसूस किया कि पहले जब कभी भी हम शहरों से अपने गांव में आते थे तो एक प्रकार से वो एक हीरो हुआ करते थे, अथवा एक वो रोल मॉडल जैसे हुआ करते थे, और लोग बड़े चाव से उनकी बातें सुनते थे, सुनना पसंद करते थे, बल्कि उनसे पूछना चाहते थे कि आप वहां कैसे रहते आदि आदि, तो वो बड़े एंजॉय करते थे, कुछ वक्त ही रहते थे। अब एक तो अनिश्चितता है कि कितने समय के लिए वो लोग आए हैं, और दूसरी बात यह भी है कि हर व्यक्ति के लिए आफ्टर ऑल फर्स्ट जो होता है वो अपनी लाइफ होती है, और ये जो इस समय की महामारी के कुछ ऐसे सिम्टम्स है कि जहां हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित सा महसूस करने लगा, जिस तरह का एक स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हवा बना कि सिम्टम्स कुछ नहीं है, फिर भी कुछ लोग इसके कारण परेशान हो गए, बीमार हो गए, और खास करके जैसे कुछ एरियाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो केसेस बढ़े वो केवल बाह्य लोगों के आने से ही हुआ। तो अब नेचुरली है कि सबसे पहले हर व्यक्ति के लिए उसका लाइफ है, तो वो उन लोगों से थोड़ा परहेज करने लगे, और वो पहले वाली बात नहीं रही। अच्छा, दूसरी बात ये भी थी कि कुछ लोगों की ऐसी बातें भी सामने आई कि उन्होंने अपनी तकलीफों को छुपाया था और बाद में वो प्रकट हुई थी। तो इस तरह की भी कुछ कहानियां लोगों ने सुनी थी, तो उनको ये भी लगने लगा कि किसी से भी दूरी बनाना यही एकमात्र इलाज है। और उस दूरी में उन्होंने जैसे क्या कह सकते हैं कि शारीरिक दूरियां तो बनाई बनाई, लेकिन कुछ भावों में भी दूरियां बना ली। तो ये कारण हुआ कि लोगों को ये फील होने लगा कि क्या हम इनके दिल से भी दूर हो गए क्या। हकीकत तो यही है कि ये समय की तकाजा है, समय का, कि जहाँ हर व्यक्ति थोड़ा सा सहमा हुआ है और इस वजह से ये सब हो रहा है, तो हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये समय बीतेगा तो शायद वैसी बातें हमेशा के लिए नहीं होगी।
जैसे आपने बात कही, यहाँ पर आपने बहुत ही सुंदर चीज कही कि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है। हम फिजिकली एक दूसरे से अलग हैं, बट ये दिल की दूरियां नहीं होनी चाहिए, संबंधों की दूरियां नहीं होनी चाहिए। बट अक्सर ये देखने को मिलता है कि पहले जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार दिखाना चाहते थे या किसी के साथ हमारा नजदीकी संबंध है तो हम गले मिलते थे लोगों के, तो वो उसी से पता चलता था कि हाँ भाई ये बहुत ही नजदीक के संबंधी हैं, एक दूसरे को बहुत नजदीक से जानते हैं। अब जो दूरियां आई हैं तो वो ये फिजिकल दूरियों के कारण मन में भी दूरी या दिल की दूरी ऐसा लोग समझने लगे हैं, जिसे मिटाने के लिए भी लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसे मिटाया जाए, बट क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने गाइडेंस दिए हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, हाथ धुलाई करें, मास्क पहने, अपनी सुरक्षा के एहतियात सरकार ने बताए हैं, बट ये जो जो दिलों की दूरियां हो रही हैं उसके लिए क्या एहतियात बरता जाए, इसके बारे में आप
जी, एक्चुअली इस समय ये देखा गया है कि लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। पहले प्रायोरिटीज कुछ और थी। हम लोग मेल मिलाप में अपने भविष्य को तराशते थे, हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके एक आनंद की अनुभूति करते थे। इस समय की प्रायोरिटी क्या है? पहले तो लाइफ सेविंग है। तो लाइफ सेविंग को हम इस तरह से ना लें कि हम बीमार ना हो, हम स्वस्थ रहे, ये ही कोई लाइफ सेविंग हो जाएगी। मान लीजिए कि कहा भी जाता है ना कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं हो। लंबी जिंदगी तो बहुत लोगों को प्राप्त हो सकती है। तो बड़ी जिंदगी का मीनिंग क्या है कि जितनी भी हमारी जिंदगी है उसमें हम खुल करके जिए, और वो होता है कि हमारे संबंधों में हम संतुष्ट भी हों, भावों से भरे हों, और हर व्यक्ति को हम एक अच्छा सुकून दिला सके, तभी तो हमें भी सुकून मिलता है। एक्चुअली अगर मेरे घर में या मेरे आसपास में किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति चिंतित भी क्यों ना हो थोड़ा सा, तब भी आप देखेंगे कि भारीपन वो हर एक को महसूस होता है। तो जीने का तरीका केवल ये ना हो कि हम केवल फिजिकली फिट रहे, हेल्दी रहे, लेकिन जो जिंदगी के एक एक पल है उसमें अच्छा फील करना और अच्छा फील कराना, ये एक इतनी अच्छी कला है जो कि हमें परमात्म ज्ञान से तो मिलती ही है, परंतु एक नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति चिंतन भी करे कि चीजों में केवल एक टेम्पररी सुख है, परंतु उस सुख के साथ, उस सुविधा के साथ अगर मेरे मन की अच्छी स्थिति नहीं होगी, तो क्या वो चीजें मुझे उतना आनंद दे पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कोई समय था कि जब व्यक्तियों से, लोगों से प्यार होता था और चीजों को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल जो है उल्टा हुआ है कि चीजों से प्यार बढ़ा है और लोगों को कहीं ना कहीं यूज करने के लिए हम लोग साथ ले रहे हैं। तो इन चीजों को बदलाव में लाने के लिए ही इस तरह की मोटिवेशन की या जो इस चर्चा की जरूरत है कि जीवन तभी संभव है जब उसमें कुछ लाइवलीनेस हो, और वो लाइवलीनेस वही है कि हमारे अंदर से कुछ ऐसे ऊर्जा हो कि जो हमें जीने के लिए प्रेरित करे, हमारे द्वारा औरों को भी जीने की कुछ प्रेरणा मिले। तो ये हमें अपने आप को एक लक्ष्य देना होगा कि हम जिए, परंतु जो किसी ने कहा है कि जियो और जीने दो, तो ये दोनों चीजें भी हमारे साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए।
आपने दूसरी एक बात है जो एक सवाल पूछा जा रहा है, इन्होंने कहा है कि पंकज गोस्वामी नाम है इनका, वो कहते हैं कि दीदी प्लीज स्पीक हाउ टू कंट्रोल एंगर इन होम। ये पिछले कुछ दिनों से ऐसे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लोग ज्यादा समय घरों पर रह रहे हैं, काफी बिजनेस बंद है, अगर कुछ खुले भी हैं तो उसमें भी टाइम टाइम के रिस्ट्रिक्शन हैं, तो लोगों का घर पे, बच्चे भी घर पे ज्यादा और घर पे ज्यादा लोगों का होना, ये कुछ आम सी चीजें हैं जो इस समय बदलाव में देखने को मिला है। तो थोड़ा रिश्तों में टक्कर आ रही है और इस टक्कर के चक्कर में थोड़ा गुस्सा भी ज्यादा होने लगा है, तो क्या करें, कैसे डील करें कि घर में गुस्से, बाहर डील होता था तो हम बाहर गुस्सा छोड़ के घर के अंदर शांति के लिए आते थे, घर में होने लगा है तो मुसीबत हो रही है।
सही बात है कि आज संबंधों को जीना पड़ रहा है और लंबा वक्त देना पड़ रहा है। कभी हम ये कहते थे कि हम अपने संबंधों को वक्त दे नहीं पा रहे हैं, शायद इसलिए हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है। आज हमारे पास वक्त है, परंतु उस वक्त की भी क्वालिटी, इसको हमने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक कारण जो आज के समय में घरों में संबंधों में इस तरह की जो चीजें हैं, नाराजगी है, फ्रस्ट्रेशन के कारण है। व्यक्ति जो है कई मोर्चे पर आज असहाय महसूस कर रहा है, वो चाहते हुए भी परिस्थितियां उनके हाथ से जा रही है अथवा तो वो उसे पकड़ नहीं पा रहा है, और तब वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता है, एक मानव का एक अंदर की ट्रेजेडी है ये, कि वो ये चाहता है कि लोग मुझे समझे, अरे वो खास करके नजदीक के लोगों से ये अपेक्षा हमेशा ही बनी रहती है कि मेरे जो नजदीक के लोग हैं वो किस लिए हैं, वो मुझे समझे, और ये समझे इस चक्कर में हम क्या करते हैं, उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन इस की दूसरी साइड ये भी है कि मुझे भी उनको समझना चाहिए, ये बात हम भूल जाते हैं। आधा काम तो हम करते हैं कि हम लोगों से अपेक्षा कर लेते हैं कि तुम मुझे समझो, तुम मेरे इतने नजदीक हो, तुम नहीं समझ पाओगे तो मुझे कौन समझेगा कि मेरा बिजनेस बंद है या मेरे साथ ये हो रहा है। सोचिए मेरे को कितना प्रेशर होगा कि आप क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हो। लेकिन उसकी दूसरी साइड ये है कि जो घर में रह रहे हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले नहीं थी, और वो भी कुछ डिफरेंट टाइप का, लेकिन प्रेशर झेल रहे हैं। तो समझने के साथ साथ समझाने की भी बात है, तो दोनों साइड को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात के ये जो एक डर का माहौल है, तो डर की साइकोलॉजी भी ये कहती है कि डर जब जब भी पनपता है तो प्रत्यक्ष रूप में क्रोध के रूप में बाहर आता है। अंदर वो डर है लेकिन वो प्रकट होता है वो क्रोध के रूप में है। तो अब हमें क्या करना है, वो जो हमारे अंदरूनी चीजें जो हम मिस कर रहे हैं या जो पनप गई है कुछ नेगेटिव थॉट्स के रूप में, पहले हमें उस पर काम करना है, न केवल अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। तो पूरे ही परिवार का हम कुछ समय ऐसा रखें कि जब सभी बातों से फ्री होकर हम कुछ अच्छा सुने, कुछ नहीं तो अच्छा म्यूजिक सुने, कुछ देर बैठे हम लोग साथ में, न केवल कि हाथ में मोबाइल हो, टीवी ऑन हो और बस वही एक साथ बैठे होते हैं लेकिन साथ कोई नहीं होता है, लेकिन वैसा साथ नहीं, एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे को अगर दें तो हम ज्यादा समझ पाते हैं एक दूसरे को। ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम ना समझ पाए अपनों को, तो हमें समझना बहुत इजी होता है, परंतु वही है कि अंदरूनी काम पहले करें और फिर एक्सपोज करें उसको, तो ये सरल हो जाएगा। हम किन से गुस्सा कर रहे हैं, जिनकी हमें बहुत जरूरत है, जिनके लिए ही तो हम कमाते हैं, जिनके लिए ही तो हम पसीना बहाते हैं, जिनके लिए ही तो हम चिंतित है, और उन्हीं पर गुस्सा कर रहे हैं। कल को परिस्थितियां तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये जिनके लिए हमें सब कुछ करना है वो रिश्ते तो बने रहने चाहिए, ये थॉट अगर रहेगा तो मैं समझती हूँ चेंज आएगा।
जी, बहुत बार हम लोग ये कहते हैं कि गुस्सा हम अक्सर उन्हीं लोगों पर दिखाते हैं जो हमारे अपने हैं। हम ये कहते हैं कि अगर गुस्सा कर रहा है तो क्या कर रहा है, तुम्हारे साथ तो कर रहा है, तुम तो उसके अपने हो इसलिए गुस्सा कर रहे हैं, अगर कोई पराया होता तो उस पर गुस्सा नहीं किया जाता। बट ये बात जितने कहने में आसान होती है उतना समझने में मुश्किल होती है, और आपने बहुत ही बखूबी वो चीज बताई, ये समझने की जरूरत है कि सामने वाला मुझे समझे, एक्सपेक्टेशन सही है, बट ये भी समझ लेना है कि आधी बात तो पूरी करनी है, कि वो भी मुझसे उम्मीद करता है कि मैं भी उसकी बात समझूं। और अगर हम ये सोचते हैं तो ये चीजें सही हो सकती हैं। कुछ और दोस्त हैं जिन्होंने मेडिटेशन के बारे में हमसे सवाल पूछे हैं, उन सवालों की तरफ रुख करते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप बहुत सारे लोग मेडिटेशन ऑनलाइन सीख रहे हैं, क्योंकि धार्मिक स्थल पिछले कुछ समय से बंद है, तो घर में ही रह के कुछ नया ऐसा सोचना पड़ रहा है जिससे मेंटल पीस मिल सके और मन को सुकून मिल सके। तो लोग अक्सर ये पूछते हैं और बहुत सारे लोगों का इस सवाल है, और हमारे एक और दोस्त ने पूछा भी है सवाल। वो ये कहते हैं कि हमें घर बैठ के राजयोग मेडिटेशन अगर सीखने की आवश्यकता है, तो घर में बैठे बैठे अगर हम राजयोग सीखना चाहें तो हम क्या करें, ये पूछते हैं। और दूसरा एक सवाल है जो YouTube पर हमारे साथ पूछा जा रहा है, वो ये है कि मन जो है बहुत ज्यादा चंचल है, बुद्धि हमारा भागती रहती है, मन के भटकने से हम अपने आप कैसे बचाएंगे, दो सवाल पूछे गए।
जी, मेडिटेशन ये आज के समय का एक बहुत ही जरूरत वाला विषय हो गया है, ये सभी महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो फील्ड अभी तक भी हमने एंटर करके नहीं देखा है, इसलिए बहुत से प्रश्न इस बारे में हैं। इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये तो हम पहले अपने मन को बता दें, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सा समय अन्य लोगों को बातों को सुनने समझने में दिया है, और मेडिटेशन यानी शुरुआत करनी है खुद को अधिक से अधिक जानना, खुद को रियलाइज भी करना और खुद को वॉच भी करना, ऑब्जर्व भी करना कि मैं इस समय कहाँ हूँ, वहां से ये यात्रा शुरू होती है। वैसे ये बहुत विशाल विषय है, ये तो आप जानते ही है कि सालों तक भी पढ़ा जा सकता है, परंतु परमात्मा ने सहज राजयोग ये शब्द यूज किया है, तो हम ये महसूस भी करते हैं कि अति सहज है। केवल तीन बातें हमें खुद से पूछनी है या जानने की कोशिश करनी है। एक तो आखिरी जो मेरा अस्तित्व है, ये अस्तित्व क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस केवल ये बॉडी का एग्जिस्टेंस अगर मैं देखूं तो जब से जन्म हुआ तब से मेरा इस धरती पर एग्जिस्टेंस है, लेकिन मैं कौन, ये एक शुरुआत का प्रश्न है जिसको अभी तक भी यक्ष प्रश्न कहा गया कि नो थाई सेल्फ, अगर जब तक हमने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा तो हमारी यात्रा ही आगे नहीं बढ़ती है। तो आखिरी जो ये फील कर रहा है कि मैं खुश हूं या मैं उदास हूं, मैं अच्छा हूं या मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, मेरा भाग्य अच्छा है या नहीं है, ये जो फील कर रहा है ये कौन है, मेरा एग्जिस्टेंस ये है कि मैं बॉडी से अलग एक ज्योति हूं, तो ये है पहली बात। दूसरी बात अपने आप को ये पूछना, मेरा क्या क्या है, क्या है जिसे मैं मेरा कहती हूं। अगर हम इस पर भी थोड़ा गौर करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ध्यान उन चीजों पर जाएगा कि हम किन चीजों को मेरा कहते आए, मेरी पहचान, मेरी डिग्री, मेरी क्वालिफिकेशन या मेरा परिचय, मेरा लोकेशन आदि चीजें तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में इतने लाखों लोग अचानक, जो कल तक बहुत ज्यादा कोई अस्वस्थ भी नहीं थे और उन्होंने कुछ ही समय में अपने शरीर को छोड़ दिया, तो तब विचार भी आता है कि वो चले गए वो कौन ना, उन्होंने अपनी वो सारी चीजों को यहाँ छोड़ दिया, आइडेंटिटी को, लोकेशन को, सब कुछ, लेकिन वो चले गए, वो एक उसकी आत्मा जो श्रेष्ठ शक्ति। तो मेरा क्या था, जो मैं साथ रखती हूँ वो मेरा है, जो छूट जाता है वो मेरा नहीं है। तो वर्तमान में चाहे मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन मेरा परमानेंट जो मेरा है वो क्या है, उस पर हम गौर करेंगे तो मेरा थॉट पावर, मेरा मन, वो मेरा है, और जिससे मैं सही और गलत को समझ पाती हूँ वो डिसीजन मेकिंग पावर वो मेरी है, जिसका सुपर फॉर्म होता है विवेक। तो कहते भी है कि जब किसी का विवेक काम नहीं करता है तो इसके बाद तो अभी इसका कुछ बचा ही नहीं, इसका क्या कर सकते हैं, इसका तो विवेक ही काम नहीं कर रहा अभी। तो वो विवेक मेरा अच्छा रहे, मेरी थॉट पावर अच्छी रहे, तो ये मेरा है, और मुझे करना क्या है। मुझे करना ये है कि मैं जहां हूं वहां से कुछ बेटरमेंट की ओर मेरी यात्रा को मुझे ले जाना है। ये संकल्प हो, जैसे कहा गया पिछले दिनों में बहुत बार ये बातें निकली कि बाहर नहीं जा सकते हो तो अंदर जाइए। ये एक यात्रा है जिसको हम शुरू करें कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं जहां हूं वहां संतुष्ट हूं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे में और क्या पोटेंशियल है उसे मैं डेवलप कर सकती हूँ। तो अंदर जाकर अपने आप को देखना, अपनी आत्म स्थिति में रहना, वहां से हम शुरुआत करें। और ज्यादा नहीं, 20 मिनट भी अगर हम कुछ मॉर्निंग आवर्स में जब हम बहुत फ्रेश होते हैं तब अगर 20 मिनट के लिए भी इस तरह बैठ जाएं, और हो सके तो कोई अच्छा शांत माहौल हो, थोड़ा सा म्यूजिक या कोई अच्छी योग की कॉमेंट्री को आप यूज करें, तो आपको बहुत मदद मिलेगी और विधिवत भी आप उसको पूरा सीखेंगे तब तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो ये राजयोग हमें इतना अच्छा मन को प्रसन्न करता है कि हम मन के राजा अनुभव करते हैं। तो इस समय तो ये हर एक के लिए बहुत अच्छी चीज है, जरूर करना चाहिए।
और ये घर बैठे कर सकते हैं, उसके लिए कहीं और
हाँ
बाहर
जी
जाने की जरूरत नहीं।
जी जी जी
एक और सवाल है दीदी जो मैं लेना चाहता हूँ। ये भी एंगर से रिलेटेड ही सवाल है और गीता जी का सवाल पूछती है। गीता की अलाम जी इनका नाम है और ये फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को। वो कहते हैं, दीदी, सप्रेसिंग माई एंगर समटाइम्स डिस्टर्ब्स मी, व्हाट टू डू, बिकॉज एवरी टाइम वी कांट थिंक द अदर इज राइट। वो ये कहते हैं कि बहुत बार हम अपने एंगर को सप्रेस करते हैं कि भाई थोड़ा तो गुस्सा नहीं होना है, अंदर गुस्सा हो रहा होता है बट हम उसको सप्रेस कर देते हैं। और हर बार कोशिश करना कि नहीं सामने वाला सही है ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा ये कहते हैं। और एक और प्रश्न है जो मैं साथ साथ पूछ लेना चाहता हूँ। पद्माक्षन पाचेन ये इनका नाम है और ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। फेसबुक पे पद्माक्षन जी पूछते हैं, ये पूछते हैं, इनका सवाल है, दीदी, सम थिंग्स आर बियॉन्ड माई कंट्रोल एंड आई नो देर इज नथिंग आई कैन डू, स्टिल आई एम वरीड, व्हाट शैल आई डू। कुछ चीजें मुझे पता है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, बट फिर भी मेरा मन इस चीज को मानता नहीं है और बार बार इस चीज पर मैं चिंता करने लगता हूं, तो मैं क्या करूं।
दोनों ही बातें थोड़ी सी कनेक्टेड ही है ऐसा मुझे लगता है। जो हम कहते हैं कि गुस्से को मैं दबाना चाहती हूँ, ये एक सेकेंड स्टेज हो सकती है कि जब मैं गुस्से को आने के बाद कंट्रोल करना चाहती हूँ, लेकिन तब तक मुझे क्या लग रहा है कि वो गुस्से का आना वो तो वाजिब था। कहीं ना कहीं मैंने ये मान लिया कि गुस्सा आना तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि चलो इसका कोई फायदा नहीं होगा तो इसे मैं कंट्रोल कर लूँ, तो तब वो सेकंड स्टेज आ जाती है, तब हम उसे दबाना चाहते हैं। पहली चीज है कि गुस्सा आता क्यों है, तो ये जानने की बात यही है कि हम जो भी टास्क लेते हैं जीवन में, जो भी हमारे सामने कोई बात आती है, तो इंसान अपने ईगो के कारण हमेशा से ये सोचता है कि आई एम ऑलवेज राइट। और वो इस बात को लेकर जब भी कुछ अनायास भी अगर बोल देता है तब भी उसके बाद वो उस बात को सिद्ध करना चाहता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकती और मुझे कम से कम ये बात बता देनी चाहिए कि मैं अभी भी जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो राइट है। और कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ भी कुछ गलत हो रहा हो तो उसमें भी हम यही समझते हैं कि वो भी किसी और के कारण हो रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि गुस्सा करना एक कमजोरी है, गुस्सा आना ये मेरी मेंटल वीकनेस है, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। बट व्यक्ति मेरे सामने जो है या परिस्थिति वो ऐसी है कि जिस वजह से अब तो एक ही ऑप्शन रह गया है कि मुझे गुस्सा ही करना है। तो पहली बात की इस थिंकिंग को हमें बदलना चाहिए, क्योंकि कभी भी दुनिया में जिसने भी अगर गुस्सा किया तो आप देखिएगा बाद में उसे यही लगता है कि बिना गुस्से के किसी और तरीके से इस चीज को डील किया जा सकता था और तो बेहतर होता था। ये चीज बाद में महसूस होती ही है, तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा पहले इस बात को महसूस करें कि क्या मैं बिना गुस्सा किए अपनी बात को किसी और तरीके से पहुंचाना जानती हूँ या सीखूं या कर सकती हूँ तो मैं जरा ट्राई करूँ। और दूसरी बात कि जब कोई चीजें परिस्थिति कंट्रोल से बाहर है, जैसा हमने आपने कहा, तो ये हम समझ रहे हैं कि मेरी कैपेसिटी के बाहर है, लेकिन अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपकी जितनी कैपेसिटी है भी वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपको अगर अपने आप को और करना है, परिस्थितियों को आपको और ज्यादा नियंत्रण में लाना है, तब आपको पीसफुली उसके साथ चिंतन को जोड़ना चाहिए, कुछ अपनी इंटरनल स्टेबल होकर के उसके मजबूत करना चाहिए अपने आप को, बजाय उसके अगर हम एक्सपोज ही ज्यादा करते रहेंगे, जैसे कि दूसरों को ब्लेम कर दिया, जैसे नाराज हो गए आदि बातें, तो इसमें तो हमारी जितनी शक्तियां है भी वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और जिंदगी के हर टास्क में केवल मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए कि आई एम राइट, इसका मतलब मैं जीत गई, ये थिंकिंग हम छोड़ दें। अगर हमने किसी की खुशी के लिए ये कह दिया कि मैं गलत थी, तो ये आपका स्वीकार करना भी उस परिस्थिति में आपको जिताता है, क्योंकि आपने दूसरे को जिता दिया, दूसरे को आपने खुश कर दिया, और बाद में जैसे ही वो भी नॉर्मल हो जाते हैं तब वो खुद भी कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ा तो मैंने भी गलत किया था, है ना, आपको गुस्सा दिलाया, वो स्टार्ट किया ना, तब मैंने भी कुछ गलत किया था। देखिए इतना लाइट हो जाएंगे आप। इसलिए किसी ने कहा है कि थोड़ा सा झुकने से बहुत बार हम परिस्थितियों को झुका लेते हैं या अन्य को भी बदल देते हैं, तो हम इसका प्रयोग तो करके देखें, थोड़ा पोलाइट होकर के अपना पक्ष थोड़ी देर बाद भी रखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि हम हमें लग रहा है कि कुछ गलत है तो हम सोचते कि नहीं इसी वक्त ये सही सिद्ध हो जाना चाहिए, फैसला हो जाना चाहिए। जी तो ये चीजें जो है ये थोड़ा सा धीरज संयम के साथ अगर की जाती है तो देखा जाता है बड़ी से बड़ी बात भी या सामने वाले का कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया हो, लेकिन आप उसे भी बिल्कुल थोड़ी देर में नॉर्मल कर सकते हैं। तो मैंने ये अनुभव किया है कि गुस्सा क्षणिक होता है लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है बहुत देर तक चलता है, तो हम उस क्षणिक चीज को कंट्रोल करना या उसे समझना सीख जाएं। सुबह से ही अगर हम थोड़ा सा अटेंशन देते हैं कि मुझे आज हर परिस्थिति में थोड़ा शांतिपूर्वक हर चीज को डील करना है, तो मैं समझती हूँ बहुत फर्क पड़ता है। और मेडिटेशन की प्रैक्टिस से भी इसमें हमने देखा है बहुत लोगों के स्वभाव में बड़ा अंतर आ जाता है।
जो आप ये बात कह रहे हैं उसी के लिए एक और क्रॉस प्रश्न आया है यूट्यूब से। ये हमारे एक दर्शक हैं जो सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं दीदी जब हम गुस्से को कंट्रोल करती हूँ तो दूसरे को आदत हो जाती है कि ये तो अब चुप रहेंगी और वो और ज्यादा हमें गुस्सा दिलाते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? ऐसे भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है।
तो ये बात है कि दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जो चुप हो जाता है तो उसे ही फॉल्ट में माना जाता है, और ये कहते हैं कि या तो वो कमजोर है या तो इस वक्त वो गलत है, इसीलिए उसने अपनी हार मानते हुए अपने को चुप कर दिया है। तो ये आज तक की एक समझ हमारी पनपती रही है, लेकिन देखा जाता है कि एक होता है इंटेंशन और एक होता है परफॉर्मेंस। तो इंटेंशन मेरा अगर बहुत अच्छा है, मैं परिस्थितियों को ठीक करना चाहती हूँ, मैं संबंधों को अच्छा बनाना चाहती हूँ, तो ये इंटेंशन प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। परफॉर्मेंस के रूप में मैंने थोड़ा सा मीठा बोल भी दिया या थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी अगर मैंने मन से माफ नहीं किया होगा तो वो भी बहुत ज्यादा असर नहीं करता है। तो जो कहते हैं कि एक इंटरनल कनेक्शन होता है कि जो मैं अंदरूनी सोचती हूँ वो भी अगले तक पहुंचता जरूर है, तो पहले तो मुझे ही अपने अंदर ये मान के चलना चाहिए कि क्षमा, फॉरगिवनेस, ये बहुत बड़ा गुण है और इससे कुछ भी नुकसान नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए किसी और को अपनी विजय महसूस होती भी है तो वो हम उसको सुख दे रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। क्षमा को समझना इस तरह से चाहिए क्षमा एक दान है, और दान जो देता है वो उस वक्त उसके हाथ से कुछ तो भी कम होता है। मतलब दान माना मैंने दिया, तो मेरे पास से खजाना उस वक्त तो कम होता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो देता है वो बड़ा होता है और जो लेता है वो हमेशा नीचे होता है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि दान किया है उसने, तो क्षमा दान ये भी एक दान है। तो उस वक्त ऐसा लगेगा आपको कि आपके हाथ से एक चांस छूट गया या एक मौके पर आप थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन आप तो दाता बन गए, आपने तो दिया और उन्होंने लिया आपसे कुछ, तो आप तो फिर भी बड़े ही हुए। और आपका इंटेंशन क्या था कि आप शांति चाह रहे थे, आप हारमनी चाह रहे थे, इसलिए आपने ये एक हिम्मत भरा कदम उठाया। और ये कहा भी जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम, कमजोर लोग तो किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं, लेकिन जो बहादुर होते हैं वही तो क्षमा करते हैं। तो आपको महान बनना है तो इसका प्रयोग करना चाहिए।
बहुत अच्छी बात कही दीदी आपने, और बहुत सारे हमारे दोस्त अप्रिशिएट कर रहे हैं। रूबी जी कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, कुछ और दोस्तों ने कहा है कि मैंने इसको ट्राई करके देखा है। एक हमारे साथी हैं रूपाली गौरव, गौरव जी को भी नाइस कहते हैं, और कुछ अप्रिसिएशन ऐसे आए, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई मैंने इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा है। ऐसे हमारे एक दोस्त हैं जो आसाम से, वो भी हमें फीडबैक दे रहे हैं, और फेसबुक पे बहुत सारे लोग जो चीजें आपकी बातें सुनकर वो एग्री भी कर रहे हैं कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। मुझे एक बहुत अच्छी बात जो लगी, क्षमा जो है वो दान है, वो जब आप दे रहे हैं तो नेचुरली एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि आप एक डोनर हैं, आप मतलब सिर्फ कोई चीज नहीं दे रहे, दान देने के लिए मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, तब जाके दान दिया जाता है। तो जब आप उसको उस इंटेंशन से, उस नजर से देखते हैं, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला क्या करता है, बट मैं इस चीज को कर सकता हूँ। पद्माक्षन पाचिन जवाब में कहते हैं कि थैंक यू कि आपने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया, और मुझे रिलीफ महसूस हुआ है आपके जवाब को सुनने से, थैंक यू कहते हैं। रंजना चरक जी कहते हैं कि आई एम एक्सपीरियंसिंग वंडरफुल एक्सपीरियंसेस, थैंक यू, और ओम शांति कहते हैं। फेसबुक पर ही हमारे साथ जुड़े हैं। अगला सवाल मैं लेना चाहता हूँ, ये तो एंगर से रिलेटेड चीजें हुई जो अक्सर हम इग्नोर करते आए हैं कि भाई चलो गुस्सा करता है तो थोड़ी देर के लिए हम चुप हो जाएं। चुप होना अच्छी बात है, बट हम मुख से तो चुप हो जाते हैं बट अंदर चलता रहता है। जब आपने ये कही देने की बात कही, तो अक्सर हम दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं कि भाई दूसरे लोग अगर गुस्सा कर रहे हैं तो वो ठीक हो सके, या फिर कोई बहुत नेगेटिव सोच रहा है, या किसी और के ख्याल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है कोई व्यक्ति, तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं। जैसे ये सवाल है यूट्यूब से, हमारे साथ यतीन्द्र लिखते हैं। यतीन्द्र का प्रश्न है, सिस्टर प्लीज रिप्लाई हाउ टू एंजॉय आवर स्टडी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जब हम पढ़ाई करते हैं तो भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पढ़ाई हमारे ऊपर एक प्रेशर है, उसे हम एंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि जब हम अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तभी भी मतलब बहुत प्रेशर सा महसूस करते हैं कि भाई इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए, मेरा मन भाग रहा है। तो ये दो चीजें उस चीज के बारे में बताएं।
राजयोग ये कहता है कि आपको मन को दबाना ये कंट्रोल करना नहीं है। एक्चुअली किसी ने कहा है कि किसी को हराना ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को जीतना ये लक्ष्य होना चाहिए। अब इसमें क्या अंतर है? हराना माना किसी को हम ये महसूस कराते हैं कि तुम मुझसे कमजोर हो, मेरा कहना तुम्हें मानना होगा। लेकिन जीताना क्या है, जीतना क्या है कि तुम मेरे दोस्त हो, और इसलिए हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और हम चलिए कुछ बेटर करने के लिए साथ चलते हैं। तो किसी ने कहा ही है कि अच्छा राजा वही होता है जो कम से कम युद्ध करता है लेकिन दोस्ती ज्यादा करता है। तो हम भी एक आत्मा राजा है, अपने जीवन के राजा है हम, तो हम अपने जीवन में दोस्त बढ़ाएं, न कि दुश्मन बढ़ाएं। इसी तरह अपने मन के साथ भी हमें दोस्ती करनी है। हमें तनिक भी ये नहीं लगना चाहिए कि मन तो कुछ और कर रहा है लेकिन मैं हूं ना, मैं उसे करने नहीं दूंगा, और हम उसको दबा दें, तो ये फीलिंग्स भी थोड़ी सी नेगेटिव ही है। हमें ये कहना है कि हे मेरे मन, तू तो मेरा जन्म से साथी है, जन्म जन्म का साथी है, और तुमने तो मुझे क्या कुछ नहीं दिखाया, क्या कुछ नहीं सिखाया। तुम्हारे जरिए तो मैंने संसार में कितनी चीजों का आनंद लिया, कितनी चीजों को समझा। अब जरा मेरे साथ और चले, तुम मेरे को समझ में, तुझे समझूं, ऐसे अपने मन को जरा साथ ले। और ये वक्त क्या हमसे डिमांड कर रहा है, इस वक्त की जरूरत क्या है। चलो थोड़ा सा हमें बदलना होगा अपने को, लेकिन ये वक्त के अनुसार हमें इस तरह से चलने से हमें बहुत ही आगे अपने भविष्य को आनंदमयी बनाने का एक मौका है। तो थोड़ा सा इस तरह से हम अपने मन को ले। पढ़ाई की जहां तक बात है, पढ़ाई को देखा गया है कि बहुत प्रेशर माना जाता है। कई बच्चे भी यही कहते हैं कि एग्जाम के दिनों में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं कई बच्चे। जैसा कि मैं अभी यूथ विंग के कई कोर्सेज कराती हूँ, तो मुझे बहुत से बच्चे यही कहते हैं एग्जाम के टाइम क्या करें, उस समय खुश रहना बड़ा मुश्किल आ गया। तो हमने उसको भी एक पहले से ही कुछ ऐसा बना लिया है कि अमुक अमुक लेवल तक मेरा परफॉर्मेंस होना ही चाहिए। बल्कि इतना नहीं, कभी कभी पेरेंट्स का, दूसरों का भी इतना ज्यादा उस पर एक प्रेशर होता है कि देखो उसने यहां तक कर लिया है, तुम्हें भी इतना इतना तो कर ही लेना चाहिए। तुम्हारा बड़ा भैया यहां तक पहुंचा था तो तुम्हें इतना तो करना ही है। पता है तुम्हारे पापा कितने बड़े पोस्ट पे हैं, तो तुम्हें भी ये बनना है, इंजीनियर बनना है, वो बनना है। तो ये जो टारगेट्स हम सेट कर लेते हैं, तो तब कहीं ना कहीं हमें वो अपना जो रनिंग है उसमें टारगेट को देखते हुए एक अलग सा प्रेशर फील होने लगता है। और कंपेयर कभी कभी हम जो कर लेते हैं दूसरों से। देखिए हमारी जंग अपनी है, हमारा ट्रैक अपना है और हमारी मंजिल अपनी है। कोई किसी के जैसा न तो कभी बन सकता है और न किसी की तरह वो जी सकता है। हर एक का वे ऑफ लिविंग भी अपना अपना है। तो ये प्रेशर करने वाली चीजें ये होती है कि मैं उससे आगे बढ़ूं। जो कहते हैं ना कि जंगल में दो दोस्त जा रहे थे, तो अचानक शेर के गरजने की कहीं दूर से आहट सी आवाज सी आई, तो एक दोनों थोड़े से घबराए, तो कहा अभी तो कुछ करना पड़ेगा, नजदीक में हमको लग रहा है कि शेर आ रहा है, हमारे पीछे आ सकता है। तो एक ने क्या किया कि अपने वॉकिंग शूज छोड़ के रनिंग शूज पहन लिए। तो दूसरे ने बोला तुम रनिंग शूज पहन क्यों रहा है, क्या तू इतना दौड़ेगा कि शेर तुझे पकड़ नहीं पाएगा। तो वो कहता है कि मुझे मालूम है कि शेर तो मुझे फिर भी पकड़ सकता है, परंतु मैं रनिंग शूज इसलिए पहन रहा हूं कि तुमसे तो मैं ज्यादा दौड़ लूंगा, तो शेर जब तक आएगा पहले तुम्हें खाएगा, बाद में मेरा नंबर आएगा तो मैं कहीं आगे निकल सकता हूं। तो आज क्या हो गया है, दूसरों से आगे बढ़ना, दूसरों से बेहतर दिखना, ये प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है। मैं जहां हूं वहां से और अधिक अच्छा बनूं, ये मेरे जीवन में, मैं जीवंत हूं तो ये तो होना ही चाहिए। तो दूसरों की कंपेयर में मुझे कुछ दिखाना है, तब प्रेशर होता है। तो हम इसको नेगेटिव बात कहेंगे कि इस थिंकिंग को छोड़ दें। जहां तक भी आप पहुंचे, सफर भी बड़ा आनंद वाला हो और मंजिल भी आनंदमयी हो। जो मिल जाए उसी का आनंद लेना है, और जब उस मंजिल को पा रहे हो तब भी आनंद पूर्वक खुशी खुशी पाए, यही तो लाइफ है।
बहुत ही अच्छी बात कही दीदी। ये कंपटीशन जो है आजकल हम कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन होने लगा है, कि हम गला काटने पे भी मतलब उतर आते हैं, कि मतलब हमें ये नहीं सोचना होता है कि हम खुद सक्सेसफुल हो, हमें ये लगना होता है कि हम उससे आगे निकल रहे हैं। और शायद इसके चक्कर में हम लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, जो हमें पढ़ाई करने में अच्छा लगना चाहिए, कुछ ज्ञान हासिल करने में जो बुद्धि को लगना चाहिए कि हमने कुछ हासिल किया है, वो सुख हम महसूस नहीं कर पाते। और बच्चों को खास जो ये चाहते भी हैं, वहां पर भी बहुत सारे प्रश्न उनको झेलने पड़ते हैं। कुछ और सवालों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइव ये प्रस्तुति है, अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल हम लें, अगर आपके दिल में कोई ख्याल है, तो अगर आप कुछ भी कहना भी चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे और यूट्यूब पे दोनों ही जगह आप लिख करते हैं, तो हम इस पर बातचीत करेंगे। अमोल जी इसका सवाल है, अमोल जी पूछते हैं सिस्टर सिस्टर हाउ टू कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन स्टडीज। कंसंट्रेशन आज एक ऐसी चीज हो गई है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। ये सिर्फ स्टडीज के बारे में ही नहीं, किसी भी टास्क के बारे में हो सकता है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गए, स्पेशली जब आप ऐसे टाइम पे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं या कुछ शोर हो रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन होने लगा है, तो हम कॉन्सेंट्रेट कैसे करें? इससे मिलता जुलता एक और सवाल है जो यूट्यूब से हमारे साथ पूछे जा रहे हैं। हमारे एक दोस्त पूछते हैं, पढ़ाई में जब भी फेल हो जाते हैं तब क्या करें? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है तो तब रियलाइजेशन होता है कि अरे अब तो नुकसान हो गया, अब क्या करें, तो लोग हताश हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी उन्होंने सवाल पूछे।
पढ़ाई अपने आप में जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत आनंददायी, एक तो जैसे मैंने पहले ही कहा उसे बनाना चाहिए, प्रेशर से तो परे रहना ही है। कुछ और बातें भी हम ध्यान रखें, जैसे कि हमारी जो जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से हम ये देखें कि हम किन समय में, कौन से आवर्स में हम अपने आप को ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं, तो उस वक्त हम पढ़ाई करने बैठे। ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी टाइम बैठ जाते हैं, उसके पहले वो सबके साथ खेलने में, बातों में, टीवी आदि में लगे रहते हैं, और फिर चलो सभी लोग बंद कर दिया, शांत हो गए, अब मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन मेरे मन के अंदर तो वो जो इतनी देर तक मैंने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लिया तो वो अंदर आ गया है, तो फिर एक सब्जेक्ट में जब मैं लगाना चाहती हूँ मन को तो नहीं लग पाता है। बेटर यही होता है कि हम रात को जल्दी सो के, समय पर सो के, और अर्ली मॉर्निंग जब बाकी सब लोग भी अपने आप में शांत हो या अपने में बिजी हो, तो वो टाइम अगर हमें अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सेट करना चाहिए कि हम उस समय फ्रेश अपने आप को रखें, तो अर्ली मॉर्निंग की पढ़ाई ये हमें बहुत मदद करती है। दूसरी चीज है कि अगर एग्जामिनेशन नजदीक है तब तो हमें कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया और टेलीविजन से दूर ही रहे, ये बेहतर विकल्प है। मुझे याद है कि माउंट आबू में डॉक्टर कलाम सर आए थे हमारे यूथ विंग के कार्यक्रम में, और उन्होंने भी, एक मदर ने क्वेश्चन किया था कि हमारा बच्चा एग्जाम के टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत एक जवाब दिया था कि मैडम आपके बेटे का एग्जामिनेशन से 3 महीना पहले से टेलीविजन देखना बंद कर दे। उस समय सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं बच्चों तक था, तो वो मदर ने एक बात और कही थी कि फिर उनका जीके कमजोर हो जाएगा। तो सर ने बहुत वंडरफुल बात कही थी कि आप मुझे देखते हैं ना, आप क्या समझते हैं कि मेरे बारे में, आप क्या जानते हैं, आपका जीके क्या कहता है। तो वो मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि सर वी आर प्राउड ऑफ यू, आप तो हमारे देश के मिसाइल मैन हैं, हम आपसे इंस्पायर होते हैं, आपने इतनी छोटी उम्र में क्या क्या संघर्ष किए और आप कितना आगे पहुंचे। तो सर ने कहा लेकिन इसके सिवाय आप कुछ जानती हैं, तो खुद के बारे में उन्होंने कहा था कि दिस कलाम हैज 33 PhD डिग्री बट कलाम नेवर वॉच टेलीविजन। और ये बात मुझे भी आज तक इतनी अपील कर गई थी, तो मैं ये शेयर करती हूँ कई बच्चों से कि कुछ बनना चाहते हो तो फोकस्ड होने के लिए जिन चीजों से आपका इस समय विशेष कोई लेना देना नहीं है तो उससे बचने की कोशिश करें। आप देखिए कि इतनी ग्रेट पर्सनालिटी ने अपने आप को सोशल मीडिया और बाहरी सभी न्यूज से परे रखकर और कितना कुछ अचीव किया, तो हमारी खबरें बने, हम क्या खबरें देखेंगे, हमारा इतिहास बने, हमारी डॉक्यूमेंट्री कहीं ना कहीं रिलीज हो, हम क्या दूसरी की बातों को देखेंगे, हमारी कहानियां बने, तो हमें अभी फोकस करना होगा। तो एक तो इन चीजों से बचे, और थर्ड चीज है कि जब भी एग्जाम नजदीक होते हैं तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ वाइज भी बैलेंस रखे, कि हम बहुत ज्यादा जागते रहते हैं और वो जो लास्ट लास्ट में प्रेशर होता है तो हम खाना भी नहीं खाएंगे और बस, और अभी तो बाकी है, अभी बाकी है, और वो सिलेबस पूरा करने के चक्कर में, तो ये भी हम कभी कभी गड़बड़ कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि हमने जितना स्टडी किया भी होता है राइट टाइम पर हम वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो हेल्थ का भी ध्यान रखें, और बहुत से स्टूडेंट्स को हम मेडिटेशन जब सिखाते हैं तो वो मेडिटेशन के बाद जब स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छा रिलैक्स होके पढ़ सकते हैं। तो आप ज्यादा नहीं, 5 मिनट स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान लगा लें और अपने को याद दिला दें कि मैं अपने बेहतर भविष्य के लिए अब सुंदर सी एक पुरुषार्थ के लिए बैठ रहा हूँ और मैं सारी बातों से फ्री हूँ। फिर आप देखिए शुरू करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और जो फेल होने की बात एक हमारे दर्शक ने कही है, जिंदगी में बड़े बड़े लोग जिनको आज आप सफल देखते हैं, मल्टी मिलियनेयर देखते हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज आप कभी पढ़ लीजिएगा, सभी के जीवन में फेल्यूअर्स अनेक बार आए, चाहे वो बिल गेट्स क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर कलाम क्यों ना हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन क्यों ना हो, जो आज अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ कर पाए हैं लेकिन उन्होंने भी जीवन में बहुत बार फेल्यूअर देखा। बस उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो बीती हुई बातों को न सोच के पुनः अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और वापस उन्होंने परफॉर्म किया तो बहुत कुछ कर पाए। तो एक फेल्यूअर कुछ भी बड़ा नहीं है, वो तो हमें पाठ सिखाता है कि अगली बार क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो बिल्कुल निराश न हो, जीवन बहुत लंबा है और भी बहुत चांस मिलते हैं, हम कर ही सकते हैं।
बहुत अच्छी बात है दीदी, आपने हिम्मत भी दी और साथ साथ ये ढांढस भी दिला है कि भाई किसी भी चीज के लिए दिल छोटा नहीं करना है और ये देखना है कि फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में देखना है। बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने फेलियर्स को देखा और फिर वहां से आगे बढ़ पाए। अगला सवाल फेसबुक से मैं ले रहा हूँ। फेसबुक से हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, देव प्रसाद नाम है इनका। कहते हैं, दीदी जी, आई एम इन सेल्स इंडस्ट्री। एज वी नीड टू डू सेल्स, सेल्स करना पड़ता है, तो सम प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड, इवन आई डोंट फील कॉन्फिडेंट टू दैट सेल, बट क्या करें, काम तो है कि भाई इस चीज को सेल करना ही पड़ता है, बट इस बात की भी मुझे चिंता होती कि जब सामने वाला खरीद लेता है उस चीज को और वो चीज अच्छी नहीं होती तो वो हमें बदुआएं देगा, कोसेगा, हालांकि वो मुझसे आके मिलेगा नहीं, बट दिल ही दिल में तो उसकी बदुआएं निकलेंगी, वो कोसेगा, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए?
देखिए, जब किसी चीज की प्रारंभ में ही आपको कॉन्शियस कहीं ना कहीं डगमगा रहा है तो आप उसकी कहीं ना कहीं चेंज करने का कुछ कोशिश करिए। हर चीज का विकल्प तो होता ही है, सिर्फ कंपेयर करने पर ऐसा हो सकता है कि आप दूसरा कोई प्रोडक्ट अगर सेल करेंगे या कोई क्वालिटी बेटर करेंगे तो आपको थोड़ा सा इनकम में फर्क पड़ेगा या थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ेगी, लेकिन आपको जब खुद ही आपका दिल अच्छा है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है और इसका परफॉर्मेंस लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो नेचुरली है कि कोई अपना धन देगा और उसके हिसाब से अगर उसको कोई चीज की क्वालिटी नहीं मिलेगी तो वो बुरा तो लगेगा। और ये तो आप धन तो कमा लेंगे लेकिन साथ साथ आप दुआएं भी कमा लेंगे, तो ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। अगर तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए और कुछ नया काम करिए, कुछ नई चीजों को सेल कर करने की कोशिश करिए। इससे थोड़ा हो सकता है कि आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी स्लो हो सकती है, आपकी कमाई में कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा अंतर आ सकता है, लेकिन कहा भी जाता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप धीमे भी चलेंगे लेकिन अगर आप स्टेबली कोई काम को, दिलों को जीतते हुए फेथ, देखिए किसी भी मार्केटिंग बिजनेस के अंदर फेथ बहुत बड़ी चीज होती है। लोगों का फेथ अगर आपने जीत लिया तो क्या होगा कि 1-to-1 जो लोगों का माउथ पब्लिसिटी है वो बहुत ज्यादा आपको मिलेगी, और इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है कि आपको लोग खुद ही आपकी विज्ञापन लोग करेंगे। तो आप अपने कॉन्शियस की सुने, अपनी अंतरात्मा की सुने और कुछ बदलाव करने की कोशिश करें। खास करके बी द चेंज से आप जुड़े हैं तो आप इसके कुछ ना कुछ प्रेरणा आज ही ले लीजिए।
बिल्कुल, हमारी ये छोटी सी पहल यही रही है कि जो बदलते वक्त के साथ लोगों की नीड्स हैं, अपने आप को बदलने की जो लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम उनका सहयोग कर सकें ताकि वो स्वयं बदलाव बन सके और बदलाव के लिए प्रेरित कर सके अनेकों को। फेसबुक से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, इनका नाम है झांसी, नाम है इनका झांसी ज्वेलरी। ये कहते हैं, ओम शांति दीदी, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन विच इज द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस एंड ईगो व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। बहुत बार ये द्वंद्व होता है मन में, जब हम अंतरात्मा की आवाज के बारे में देखते हैं तो दोनों चीजें चल रही होती, कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है वो सही है, तो इन दोनों चीजों में किसी एक चीज को डिसाइड कर पाना, कैसे पता चले कि ये सही है और ये नहीं है, कौन सी मेरी आवाज अंतरात्मा की?
सही है, वैसे किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि ईगो और सेल्फ एस्टीम ये बहुत नजदीक की चीजें होती है, और व्यक्ति को अपने स्वगौरव सेल्फ एस्टीम में तो रहना ही चाहिए। कभी भी उसको उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल उसका कॉन्शियस नहीं मानता हो, फिर भी वो केवल दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। परंतु हाँ, अपने विचारों को हम इतनी जड़ता से पकड़ के भी न रखें कि जिससे हम कभी भी बदल ना पाए, या रॉन्ग वे में कभी कभी बहुत आगे चले जाएं कि जो बदलने का समय ही हमें बाद में कभी ना मिले। तो फर्क क्या होता है कि जब कोई ये कहता है कि भाई ये ईगो है या मेरा सेल्फ एस्टीम है, तो आप देखेंगे अभिमान, जिसको ईगो को अभिमान कहा जाता है, तो हमने एक डेफिनेशन बनाई है कि अभिमान वाले का एक निशानी है कि उसको आग्रह होता है कि अभी अभी मेरी बात को मानो, अभिमान। तो उसे लगता है कि जो मैंने कह दिया बस अभी तुरंत स्टार्ट होना ही चाहिए, तो वो अभिमान है। आपकी बात सही है ना, तो आप ये मत सोचिए कि अभी ही होना चाहिए। आप कभी भी, असली हीरा होगा वो कोयले की खदान में पड़ा होगा तब भी चमकेगा। आपकी बात सही है तो वो साबित हो जाएगी, या तो वो प्रैक्टिकल हो जाएगी, धीरज रखिए। तो एक तो ये है कि ऐसी बात अगर हम करते हैं, आग्रह करते हैं, तो हमारा ये ईगो है। दूसरी बात है कि अभिमान वाला ये चाहता है कि अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए, है ना, मैंने कुछ किया तो मुझे तुरंत अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। कभी कभी नहीं, आजकल बच्चे फेसबुक पे कुछ पोस्ट करते हैं, अच्छी सी एक सेल्फी लिया, पोस्ट किया, फिर तुरंत 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 हर घंटे वो चेक करते हैं कि मैं क्या, इसके कितने लाइक्स मिले, कितने क्या मिले, और उसी में जैसे हम अपने आप को बिजी कर देते हैं या अपना पैमाना तय कर लेते हैं कि वो जितने लाइक्स और जितने अच्छे कमेंट्स थे वही मेरी सेल्फी का एक प्रूव है। तो ऐसा नहीं, अभिमान इसको कहते हैं, अभिमान में नहीं। सेल्फ एस्टीम ये है कि हम आत्मा अंदर से नॉर्मल और रिलैक्स फील करते हैं, तो वो जो थॉट होता है वो रियल होता है, अच्छा होता है, तो उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका फर्क जरा सा हम महसूस कर लें और फिर आगे।
जी, अक्सर करके हम ये देखते हैं कि जब अंदर की बात सुनने के लिए कहा जाता है, जब पूछा जाता है, लोग कभी कभार कह भी देते हैं, मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा, तुम अपने आप से पूछो कि तुमने क्या किया है। तो उस टाइम पे लोग या तो फुल अपनी गलतियों पे चले जाते हैं कि हाँ मैंने ही गलती की, मेरी ही सब कुछ गलतियां हैं, और कभी कभार लोग अपनी गलतियां देख ही नहीं पाते, इसमें तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो अंतरात्मा की आवाज सुनने के बारे में जब कहा जाता है, तो हम कैसे इस चीज को समझ सकें, परख सकें, ये कभी कभार मुश्किल हो जाता है। इसके साथ मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं कि हेमा अंजारिया है जो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, और हेमा जी पूछते हैं, मुझे मेरे बच्चों बेटे को कुछ कहना है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अच्छी बात नहीं है जो उनको कहना चाहते, बट फिर भी उनको कहना पड़ रहा है, तो एक डर लगता है कि क्या मालूम, हो सकता है बात करें कि नहीं करें, बच्चे बड़े हैं, ऐसे पूछते हैं, इनके बच्चे बड़े हैं उम्र में, बट वो उनको कोई बात कहना चाहती हैं, बट उन्हें डर लगता है कि पता नहीं इनको ये बात कैसे लगेगी।
देखिए, ये केवल एक बात के लिए नहीं होता है कि वो बात अच्छी है या बुरी है, लेकिन पहले से ही हमारा बच्चों के साथ रिश्ता कैसा है, पहले से ही हम कितना उनके साथ फ्रेंडली है, उसके आधार पर ये बात तय करती है कि आप उनको कहेंगे तो कैसा लगेगा। जैसे कहते हैं कि जो जितना करीब होता है तो वो कितनी भी अधिकार वाली बात कह दे, जिसको कहते हैं ना कि अच्छा दोस्त गाली भी देता है तो वो अच्छा लगता है, परंतु जिस समय कोई दूर का व्यक्ति जो थोड़ा सा मन से दूर है, वैसे तो नजदीक है, परंतु कभी हमने एक दूसरे की केयर नहीं किया या बहुत सी बातों में हमारे ओपिनियन डिफरेंट रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर कुछ कहने से पहले झिझक होती है। तो एक बार में तो ये ठीक नहीं हो सकता है, हमें पहले तो ये फील कराना पड़ेगा कि हम तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, हम तुम्हारा अच्छा करना चाहते हैं। ये फील एक दिन में तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन कई प्रयत्न हमें करने पड़े, थोड़ा सा एक कांस्टेंट इसके ऊपर एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा कि कि जो बार बार आप बच्चों की बात को कभी कभी बड़े क्या करते, काट देते हैं। ये कहते हैं तुझे नहीं पता, हमने बहुत समय बहुत अनुभव हमारे पास है, तुम्हें अनुभव नहीं है, तुमने अभी देखा ही कहाँ है दुनिया को, आदि आदि कई बार ऐसी चीजें होती है। लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, वो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, और कई बच्चे तो बहुत अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स, स्पिरिचुअल चीजें अपना सोशल मीडिया से भी ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे होते हैं, और उनकी थिंकिंग मैंने देखा है बहुत अच्छी भी होती है। तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो बच्चे हैं, माना कि वो कहीं ना कहीं हमारे से कमतर है। तो पहले एक वो फ्रेंडली और एक अपनापन, उसकी जो भासना है वो आपको दिलानी पड़ेगी, और उसके बाद आप उनको जो भी बात कहे वो भी एक जो कहते हैं ना सत्य बात भी कहनी हो, लेकिन बड़ी सभ्यता के साथ, बड़े पोलाइटली आप कहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बात किसी को बुरी लगेगी, बल्कि आप उसके साथ साथ प्यार भी उतना दीजिए कि जिससे वो बात को एक्सेप्ट करे। जैसे किसान भी बीज डालता है ना, तो धरनी को पहले तैयार करता है, तब वो बीज धरनी भी एक्सेप्ट करती है और उगाती है। ऐसे हम भी थोड़ा सा हेल्प करें उनको कि वो मेंटली प्रिपेयर हो।
बहुत अच्छी बात आपने कही दीदी, जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे वो चीज याद आई कि जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता कि हम बीज डाल दें, उसके लिए बहुत कुछ तैयारियां साथ में करनी पड़ती हैं। रश्मि कालरा जी धन्यवाद कहते हैं कि आप बहुत अच्छे से नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं और उस चीज को उनको फायदा भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स हैं, मैं फीडबैक कमेंट्स अक्सर पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वजह सिर्फ यही होती है कि अगर मैं कमेंट्स पढ़ूं तो ज्यादा समय उसमें चला जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों का मैं सवाल ले सकूं। तो हम स्क्रीन पे आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स को दिखा रहे होते हैं, और हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आप अच्छे फीडबैक्स भी हमें देते हैं। आप किसी चीज को, किसी बात को अगर आप फायदेमंद समझते हैं तो वो बात आप शेयर भी कर देते हैं। तो आप प्लीज ये करते रहिए और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के कमेंट्स को स्क्रीन पे दिखाने की भी कोशिश करते हैं। वक्त हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, समय 1 घंटा पूरा होने को आ रहा है, तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी ने आज इतनी सारी अच्छी बातें हम लोगों के साथ शेयर की, आपने सवाल पूछे, अपने कमेंट्स लिखे, अदरवाइज भी ऐसे अच्छे फीडबैक्स दिए। इन सभी चीजों के लिए हमारे सभी दोस्त जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ब्रह्म कुमारी इसके दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। हम आपके इस सपोर्ट को, आपके इस पार्टिसिपेशन को अप्रिशिएट करते हैं, आप भी हमारे साथ बने रहें। बी द चेंज पे आप सभी के इस पार्टिसिपेशन के लिए मैं आप सभी की तरफ से गीता दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जो आज हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स बने और इतने सरलता से और इतने एंटरटेनिंग तरीके से हम सबको अच्छी अच्छी बातें सुनाई जो हम जीवन में धारण कर सकें, फोकस कर सकें और अपने जीवन को इस बदलाव के दौर में ढाल सकें और अपने आप को बदल सकें। दीदी जी, हमारे
थैंक यू,
सभी सुनने वाले और देखने वालों की तरफ से आपका धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।
अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप और हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन हैं, तो आप अभी हमारे साथ मेडिटेशन करें कुछ मिनट और हम उसे करवाएं भी, और हम सभी जो हमारे दोस्त यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी जो वीडियो देख रहे हैं वो साथ साथ मेडिटेशन करें कुछ मिनट के लिए। दीदी जी,
जी, अपने आप को हमें कुछ वक्त के लिए अपने आंतरिक जगत से और फिर उस सुप्रीम पावर जगत नियंता से जोड़ना है, तो कुछ देर के लिए सभी अपने गैजेट्स को साइड में रख के स्थिर होकर बैठकर अपने मस्तक में दो आंखों के मध्य अपना ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करें। मैं कुछ शब्दों से कुछ चिंतन आपको देती हूँ, उसे आप अनुभव कीजिए। अपने को पूछें, आखिर मैं कौन हूँ? अंदर से इस जवाब को ढूंढें। क्या ये जो मेरा फिजिकल फॉर्म है, शारीरिक जो मेरी पहचान है, यही मैं हूं, कदाचित नहीं। इस शरीर के अंदर से जो सभी बातों को सुनने वाली, बोलने वाली, आंखों से देखने वाली और सोचने वाली शक्ति है, वो मैं हूं। मैं ही हूं जो फील करती हूं खुशी को, प्रेम को, शांति को, वो मैं आत्मा हूं। मस्तक के बीच त्रिकुटी में विराजमान हूं और इस समग्र शरीर को संचालित करती हूं। प्रभु ने मुझे कितना सुंदर यह जीवन गिफ्ट दिया है। मेरा ये जीवन एक मुझे मिला हुआ चांस है, जिसके द्वारा मुझे अपने अंदरूनी जो भी पोटेंशियल है उसे प्रकट करना है। मुझ में सुंदर विचारों का बहुत बड़ा एक खजाना है। मैं चीजों को सोच पाती हूँ, समझ पाती हूँ। मुझ में सही और गलत को समझने का विवेक, उस विवेक को मुझे सदा जागृत रखना है। मुझ में कर्म करने की शक्ति है। सभी इंद्रियों के द्वारा मैं जो चाहूं कर्म कर सकती हूं। सिर्फ मुझे ये ध्यान सदा रहे कि मेरी सभी इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म हो, यही मेरा नियंत्रण मुझे और बेहतर करना है। मुझ में असीम शक्तियां है। आई हैव अनलिमिटेड पावर्स विद इन। बस फील करना, ये वो शक्तियां हैं जो मेरे जीवन को, साथ ही मेरी सभी परिस्थितियों को, मेरी जिम्मेदारियों को, अन्य के जीवन को भी अच्छा बना सकती है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शांति मेरी बहुत बड़ी शक्ति। मुझे हर व्यक्ति से, हर आत्मा से प्रेम है। मैं सभी के प्रति सद्भावना रखती हूं। सभी के लिए मेरे मन में रहम है, शुभ भावना है कि सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो। मैं परमात्मा की सुंदर रचना हूं और वो परमात्मा भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वो भी निरंतर मुझे प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं। रिसीव करें उन शक्तियों को। सूर्य की भांति परमात्मा की शक्तियां फैली हुई है इस शांत अवस्था में ही। मैं उसे रिसीव करती हूँ और अपने आप को अंदर से और मजबूत और स्टेबल बनाती जा रही। और ये अभ्यास मैं करती रहूंगी कि अपने आप से परमात्मा से भी वायदा करें। ओम शांति शांति शांति।